તારીખ 13/5/1995 શ્રી મદ્રાજચંદ્ર પત્રાંક 201 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 47
શ્રી મદ્રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 201 હિન્દી મેલેના સૌભાગ્ય ભાઈ પર કા પત્ર હૈ પતિન કો સમજ મે આતા હૈ ગુજરાતી હા
કમ આતી હૈ
કમ આતી હૈ પત્ર કા હેડિંગ હૈ ગુજરાતી પે દેખતે હૈ સર્વથા નિર્વિકાર હોને પર ભી પરબ્રહ્મ પ્રેમમય પરાભક્તિ કે વશ હૈ ઇસકા જિન્હોને હૃદય મે અનુભવ કિયા હૈ એસે જ્ઞાનીઓ કી ગુપ્ત યહ શિક્ષા હૈ સર્વથા નિર્વિકાર હોને પર ભી પરબ્રહ્મ પરબ્રહ્મ મેને અપના આત્મા તો સર્વથા નિર્વિકાર હૈ ત્રિકાલ નિર્વિકાર હૈ હા હિન્દી મેં કેવલ લક્ષ લિખ સકતે થે હા કેવલ નિર્વિકાર હોને પર ભી પરબ્રહ્મ પ્રેમમય ભક્તિ કે પરાભક્તિ કે વશ હૈ જો ભી જ્ઞાની પુરુષ હૈ ઉનકે વશ અપના આત્મા હૈ પરબ્રહ્મ નિર્વિકાર હૈ પર વશ હોના વો તો નિર્વિકાર પદાર્થ કી ચેષ્ટા નહીં હૈ વશ હોના વો કોઈ નિર્વિકાર જો નિર્વિકારી હોતે હૈ ઉસકો વશ હોના વશ કરના વો બાત તો હોતી નહીં ફિર ભી જો પરાભક્તિ હૈ પ્રેમમય પરાભક્તિ હૈ ઉનકો તો સર્વથા નિર્વિકાર આત્મા ભી વશ હોતે હૈ ઉદ્રવ દ્રષ્ટિ પ્રકાશ મેં આતા હૈ કે દ્રષ્ટિ હૈ વો દ્રવ કા કબજા લે લેતી હૈ દ્રવ બડા કે દ્રષ્ટિ બડી જિસકે કબજે મેં આ જાય वो तो छोटा हो गया ना तो ऐसे एक परिणमन और वस्तु के स्वरूप को दिखाने का एक पद्धति है कि परिणमन क्या चीज है वो दिखाने की एक पद्धति होती है इसका जिन्होंने हृदय में अनुभव किया है अपने परिणमन में श्रद्धा ज्ञान में अनुभव कर किया है कि जो निर्विकार त्रिकाल निर्विकारी द्रव्य है वो भी प्रेम में पराभक्ति के वश हो जाता है मैंने उसके अनुभव में वो आ जाता है જિસકો ગુણ કા પ્રેમ હોતા હૈ ઉસકો ગુણ કા નિધાન મિલ જાય તો કિતના પ્રેમ હોવે રુચિ હોવે ઓર પરાભક્તિ મેને કિતના બહુમાન હોવે कि एक के भाव हो जाता है पराभक्ति, मैंने एक के भाव हो जाता है पराभक्ति का अर्थ लिया है। 223 में लिखा है, देखो 223 में क्या लिखा है। परमात्मा और आत्मा का एक रूप हो जाना यह पराभक्ति की आखिरी हद है, अंतिम हद है। और ऐसी एक ही लय रहनी यह पराभक्ति है। आत्मा मैंने आत्मामय दशा, उसको आत्मा कहते हैं। अंतरात्म दशा को आत्मा कहते हैं, जो भक्ति रूप दशा है, जो प्रेममय दशा है वो आत्मा है, और परब्रह्म है वो परमात्मा है। जब निर्विकारी द्रव्य भी प्रेममय पराभक्ति को वश हो जाता है तो फिर दूसरे की तो मजा ली क्या, जो छद्मस्त है उसकी तो मजा ली क्या। ये बम्बई में इसके प्रस्वाध्याय हुआ था, तो राकेश भाई के वहाँ हुआ था, सुने ऐसे अच्छा प्रश्न वो उठाया था कि ऐसी अपने आत्मा पर पराभक्ति कब आती है, क्या सीधी सीधी आती है किसी को, क्या हम सीधी ऐसी आत्मा की भक्ति करके हमारे पर परम ब्रह्म को वश कर ले क्या, ये संभव है क्या, ऐसा ही प्रश्न आया था। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले ऐसे प्रेम में पराभक्ति अपने सत्पुरुष के सदगुरु के प्रति आती है। सत्पुरुष सदगुरु नहीं कहते हैं उसको, तो प्रभु कहते हैं, कि अपने प्रभु के प्रति आती है। और पहले प्रभुवश होते हैं, वो प्रभुवश होते हैं, फिर ये अपना परमात्मा प्रभु है वो वश होते हैं। ऐसे कैसे में वो बात आई है, प्रश्न ऐसा उठा था। क्योंकि जो आगे की अवस्था है वो अपेक्षित है, आगे की अवस्था है वो अपेक्षित है। ऐसे ज्ञानियों की यह गुप्त शिक्षा है। मैंने कौन सी शिक्षा है, गुप्त शिक्षा किस प्रकार की गुप्त शिक्षा है, कि परमात्मा को वश करना हो तो प्रेम में पराभक्ति आएगी तो वश होगा, चाहे सदगुरु परमात्मा हो चाहे अपना परमात्मा हो। मार्ग एक ही है, दूसरा मार्ग नहीं है, वो कहने का अभिप्राय है। ये गुप्त शिक्षा है, मैंने ये बोध है, ऐसा बोध उसने अनुभव करके लिखा, अपना अनुभव करके लिखा है ये बोध को। हाँ, तो यहाँ तो दिगंबर संप्रदाय में कोई अर्घ चढ़ावे ज्ञानी को तो पसीना आ जाता है लोगों को। तो क्या सुगानी जी दिगंबर नहीं थे क्या?
कुल दिगंबर थे। हैं? अष्टद्रव्य से पूजा की ना। हाँ। आज तो आठ द्रव्य होते हैं। अष्टद्रव्य से उन्होंने पूजा की, कितनी पराभक्ति।
अभी मिले नहीं थे। वो तो आत्मधर्म देख करके, आत्मधर्म में जो फोटो आई उस पर चढ़ाया। हाँ? अभी अभी विद्वानों को पंडितों को पूछो तो गृहित मिथ्यात हो जाएगा, क्या बोलेगा, ये तो गृहित मिथ्यात हो जाएगा, जबकि उनको सम्यक हुआ बाद में। मिथ्यात को मिट करके सम्यक हुआ ऐसे भक्ति करने से। तो
सच्चे का रहस्य पता रहस्य पता नहीं
जो अंदर से आता है जो आत्मा में से आता है ना वही शास्त्र है। शास्त्र निकले कहां से? शास्त्र ज्ञानियों के अंतर में से तो आत्मा में से तो निकले हैं, तो जो आत्मा में से निकला वही शास्त्र है, दूसरा शास्त्र कहां ढूंढने को जाना है। और वो शास्त्र में से दिखाया हमने आगरा में, आगरा में वो बात इसने प्रश्न उठाया कि इनके सामने बात आती है सब, तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा थे ना, कौन सी गाथा है? तीन सौ इकसठ बासठ थे, 361 थी ना गाथा, 361 बासठ गाथा थे। अच्छा, उसमें वो बात है, वो पात्र दान का अधिकार चला है कि ज्ञानी भी पात्र को दान देते हैं। तो पात्र तीन प्रकार के होते हैं और दान चार प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के पात्र में उत्कृष्ट पात्र मुनिराज है, मध्यम पात्र है पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक, और जघन्य पात्र है अविरत सम्यक दृष्टि। और दान चार प्रकार का है, आहार दान, अभय दान, शास्त्र दान ऐसा करके, और औषध दान। तो आहार दान का प्रसंग की बात वहाँ चलिए कि तीनों प्रकार के पात्र को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया जाता है। नवधा भक्ति में कौन सी भक्ति बाकी रही? नौ आ जाती है, उसमें अष्टद्रव्य की पूजा भी आ जाती है।
अधिकार चला है पंचम गुण स्थान वृत्ति का, पंचम गुण स्थान वृत्ति तीन प्रकार के
पात्र को दान देते हैं।
जगन्य को पंचम गुण स्थान वाला भी यथा योग्य है करके
हाँ देता है, देता है।
ये एक विशेषता हुई, हाँ। वाला चौथे गुण स्थान वाले को हार देता है।
जब गुरु शिष्य का आदर करता है
क्या ज्ञान करता है
वो बात कहाँ रहती है वो? और क्या ज्ञानी मुमुक्षु का आदर नहीं करता क्या? ज्ञानी हो वो उत्कृष्ट मुमुक्षु का आदर नहीं करते क्या? अज्ञानी है फिर भी चरण स्पर्श लिखा है, इसमें आएगा पीछे, इसमें नीचे ही आएगा। यहाँ परमानंद है, असंग निवृत्ति शुरू में आता है, असंग निवृत्ति होने से समुदाय में रहना, जिसका यथार्थ आनंद किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिनके हृदय में प्रकाशित हुआ है, उन महाभाग्य ज्ञानियों की और आपकी हमारा पर कृपा रहे। सुभग भाई को लिखा है, आपकी हमारा पर कृपा रहे। आम संस्कृत टीका नहीं, संस्कृत संस्कृत टीका माथा आमा नहीं, संस्कृत टीका से नहीं माथा। આમાં પણ છે 361 નો અર્થ, અતિથિ સંવિભાગ નામનું ત્રીજું શિક્ષા વ્રત કહે છે, શિક્ષાવ્રતમ ચ તૃતીયમ તસ્ય ભવેત સર્વ સિદ્ધિ સૌખ્યકરમ દાનમ ચતુર્વિધમ અપી ચ સર્વ દાનાનામ સારતરમ। જે જ્ઞાની શ્રાવક ઉત્તમ મધ્યમ જગન્ય ત્રણ પ્રકારના પાત્રોને અર્થે દાતારના શ્રદ્ધાદિ ગુણોથી યુક્ત બની પોતાના હાથથી નવધા ભક્તિ સહિત થઈને દરરોજ દાન આપે છે તે શ્રાવકનું ત્રીજું અતિથિ સંવિભાગ શિક્ષા વ્રત છે। એ દાન કેવું છે કે આહાર અભય ઔષધ અને શાસ્ત્ર દાનના ભેદથી ચાર પ્રકારનું છે। વળી અન્ય જે લૌકિક ધનાદિકના દાન કરતા આ દાન અતિશય સારું ઉત્તમ છે, સર્વ સિદ્ધિ સુખનું ઉપજાવવા વાળું છે. આવા ત્રણ પ્રકારના પાત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટ મુનિ, મધ્યમ અણુવર્તી શાવક તથા જગન અવિરતી સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. વળી દાતારના શ્રદ્ધા, તૃષ્ટિ, ભક્તિ, વિજ્ઞાન, અલુપતા, ક્ષમા અને શક્તિ એ સાત ગુણો છે. વળી અન્ય પ્રકાર આ પ્રમાણે છે, ભાવાર્થમાં પછી એનું લીધું છે. વળી પ્રતિગ્રહ, ઉચ્ચ સ્થાન, પાદ પ્રક્ષાલન, પૂજન, પ્રણામ, મન શુદ્ધિ, વચન શુદ્ધિ, કાય શુદ્ધિ, આહાર શુદ્ધિ એ પ્રમાણે નવધા ભક્તિ છે. એ રીતે દાતારના ગુણો સુધી નવધા ભક્તિપૂર્વક પાત્રને રોજ ચાર પ્રકારના જે દાન આપે છે, જો આ દાતારના સાત ગુણોને નવધા ભક્તિ સંબંધી વિશેષ વર્ણન જુઓ રત્નકરણ શ્રાવકાચાર શ્લોક 113. એ રોજ ચાર પ્રકારના જે દાન આપે છે તેને ત્રીજું શિક્ષા વ્રત હોય છે. વિસ્તાર કિયા હે નવધા ભક્તિ કા વિસ્તાર ભી કિયા હે પર વાત સંસ્કૃત ટીકા મેં ઓરિજિનલ મેં લિખા હૈ વો બાત સંસ્કૃત મેં લિખા હૈ વો બાત इसमें क्या है, धर्म का बहुमान है, धर्मी का बहुमान वो धर्म का बहुमान है. हम सम्यक दर्शन की पूजा करें, अष्ट द्रव्य से करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सम्यक दर्शन बिना सम्यक दृष्टि कहाँ पाया जाता है ये बताओ. मुनि और भगवान में सम्यक दर्शन के इसी इसकी पूजा करे और अविरत सम्यक दृष्टि में सम्यक दर्शन के है इसकी पूजा नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या? हास्यास्पद बात है. वो पर्व के दिनों में दस लक्षण पर्व में सम्यक दर्शन की पूजा करे, चौदह को सम्यक ज्ञान की पूजा करते, चारित्र की पूजा करते, तो सम्यक दर्शन की आठ द्रव्य से पूजा करे और सम्यक दृष्टि की नहीं करे, तो सम्यक दर्शन तो इसकी पर्याय है और सम्यक दृष्टि तो वो पर्याय का धनी है, तो धनी बड़ा के इसकी पर्याय बड़ी. न धर्मो हो धार्मिक ही बिना, ऐसी बात है. आत्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाना पराभक्ति में क्या है,
आत्मा और परमात्मा
दोपणा नहीं रहना, कुछ अंतर नहीं रहना, क्या अपने रूप सर्वस्व रूप अनुभव करना और एक लय से अनुभव करना, कभी हो न कभी नहीं हो ऐसी बात नहीं, कभी विरुद्ध हो कभी अविरुद्ध हो ऐसी भी बात नहीं, उसको पराभक्ति कहने में आई है. तो प्रश्न वहां चला था, इसलिए वहां वो बात खोली थी कि बीच में एक ऐसी स्थिति आती है, आए बिना रहती नहीं, बाद में ये स्थिति आती है. वो स्थिति नहीं आए और ये स्थिति आए ऐसा भी बनता नहीं है. अब पत्र शुरू होता है कि यहां परमानंद है, यहां परमानंद है, हमको परमानंद है, असंग वृत्ति होने से समुदाय में रहना बहुत विकट है, हमारी असंग वृत्ति हो गई है, इसलिए लोगों के बीच में रहना हमको सुहाता नहीं है, बिल्कुल सुहाता नहीं है। किसी से बोलना, बात करना, कुछ व्यवहार करना हमको सुहाता नहीं है। हाँ, सम्यक दर्शन हुआ, 4 महीना हुआ है, 4 महीने की बात है, कितनी असंग वृत्ति हो गई है। किसी समुदाय के साथ हमको बिल्कुल सुहाता नहीं है। जिसका यथार्थ आनंद किसी भी प्रकार से नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिनके हृदय में प्रकाशित हुआ है। ज्ञानियों का विशेषण एक वाक्य के लिए एक वाक्य पूरा लिखा है। उन महाभाग्य ज्ञानी हमारे पर कृपा करे, ज्ञानी के हमारे ऊपर कृपा हो ऐसा सादी बात नहीं लिखा कि ज्ञानी की भी हमारा पर कृपा हो। ज्ञानी कैसा होता है कि जिसका यथार्थ आनंद किसी भी प्रकार से कहा नहीं जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिनके हृदय में प्रकाशित हुआ है, आनंदमय परिणमन जिसका हुआ है, ऐसे महाज्ञानियों के हमारा पर कृपा हो, कृपा रहे और आपकी भी हमारा पर कृपा रहे। ठीक, शिष्य तो गुरु को कहे कि हे गुरु आपकी हमारा पर कृपा रहे, लेकिन यह गुरु शिष्य को कहते हैं, कैसी बात होगी। शिष्य भी कैसा होगा जिस गुरु को अपने शिष्य पर इतना बहुमान आए, वो शिष्य कैसा होगा। ऐसा क्यों, एक बहुत मार्मिक बात इधर है कि ये ज्ञानी गुरु ऐसा क्यों कहते हैं अपने शिष्य के लिए। कृपा रहे इस बात क्या कैसे करते हैं कि वास्तव में उनको भी आत्मलाभ होता है। सत्संग में ऐसे पात्र, सत्संग में उनको भी आत्मलाभ होता है, उसका हृदय अंदर से आत्मा उजागर होता है, आविर्भाव उनको प्राप्त होता है। शिष्य के साथ सत्संग करने से, हाँ, ऐसे पात्र शिष्य होते हैं कि इसके साथ सत्संग करने से अपने को अपना आत्मभाव आविर्भाव होने लगता है। तो जैसे गुरु से होता है ऐसा शिष्य से होने लगा, तो गुरु भी शर्म रखेगा नहीं कि ये शिष्य है मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं कहेगा। मान अपमान जैसा होता ही नहीं, मोक्ष मार्ग में मान अपमान जैसा कुछ होता ही नहीं है कि आपके हमारा पर कृपा रहे। हम तो आपकी चरण रज है, क्या लिखा है शिष्य को लिखते हैं, हम तो आपकी चरण रज है, ज्ञान दशा होने के बाद लिखते हैं ये पत्र तो। और सौभाग भाई को भी ज्ञान दशा हुई नहीं है, कभी कभी थपका भी दिया है आगे, वो भी अधिकार है, और इतना स्तुति भी किया है। तो क्या है कि दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। ये प्रेम से भगवान को तू कहते कि नहीं कहते हैं, है? तो भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुमान तो कितना है, परमात्मा है साक्षात उसका बहुमान में तो कोई कसर होने का सवाल नहीं है, लेकिन भक्ति करेंगे तो क्या कहेंगे, तू ऐसा है न तू ऐसा है, कहेगा कि नहीं कहेगा। वो तो आप में से तू कहाँ से हो गया, हाँ, वैसे प्रेम भक्ति आता है। हम तो आपकी चरण रज है और त्रिकाल इसी प्रेम की निरंजन देव को याचना है कि हमारा ऐसा प्रेम बना रहे, आपके साथ जैसा प्रेम है ऐसा ही प्रेम बना रहे, ऐसी हमारी याचना है। हमको और कुछ चाहिए
नहीं,
अपना अपना आत्मा अपने आत्मा के प्रति याचना करते हैं कि तुम ऐसा ही परिणमन किया करो, और कुछ नहीं चाहिए। राग दूसरी वस्तु है, प्रेम दूसरी वस्तु है, दोनों एक बात नहीं है। राग अलग चीज है, राग होता है वो कभी हट जाता है तो राग का स्थान कौन लेता है, द्वेष ले लेता है। जबकि निर्मल प्रेम होता है वहां ऐसा होता नहीं है, वो कभी हटता नहीं मिटता नहीं, दिन दुगुना और रात चार गुना हो जाएगा ऐसा बनता है। दोनों का आधार अलग अलग है, राग का आधार पुद्गल है और प्रेम का आधार चैतन्य है। अनंत प्रेम की मूर्ति है वो राकेश भाई के स्वाध्याय चला में हम लिया था वो बात, कि जैसे आत्मा ज्ञान और आनंद की मूर्ति है ऐसे आत्मा अनंत प्रेम की मूर्ति है। वो आत्मिक प्रेम जब उमड़ता है तो वो बात कोई अलग हो जाती है। वो अन्य मत में तो ऐसा कहते हैं कि भगवान को भक्त के वश रहना पड़ता है, क्या है भगवान को, तो यहां भी ऐसी बात लिया है कि ये जो सर्वथा निर्विकार परब्रह्म है ना वो भी पराभक्त के वश होते हैं, वो भी इसके वश में आ जाते हैं, ऐसी ताकत है उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्याय का वो पर्याय की महिमा कितनी है वो दिखाने की बात है, कि फिर वो परम ब्रह्म अलग रह सकता नहीं है, वो परम ब्रह्म अलग नहीं रह सकता, अनन्य भाव हो जाएगा, अन्य भाव रहेगा सर्वज्ञ स्वभाव ही है, इसलिए सर्व जानने का उसका वृत्ति रहेगा। ऐसा सुख स्वभाव है तो सुख की वृत्ति रहेगी, आनंद स्वभाव है शांत स्वभाव है तो सबकी वृत्ति रहेगी, ऐसे प्रेम स्वभाव है रहेगी रहेगी, कहीं ना कहीं तो करेगा। अन्य द्रव्य से करेगा तो राग हो जाएगा, पुद्गल से करेगा तो राग हो जाएगा, और चैतन्य से करे तो प्रेम हो जाएगा। तो अपने प्रभु से करता है वो चैतन्य से करता है। परमात्मा संत सतपुरुष और आत्मा तीनों में कोई भेद नहीं है, लिखा एक जगह तीनों में कोई अंतर नहीं है, ये स्व है और वो पर है वहां वो बात नहीं है। योग्यता, हाँ सर्वोत्कृष्ट योग्यता है वो मुमुक्षुता में, ये सर्वोत्कृष्ट योग्यता है। बस किस वजह से क्या, गुण का प्रेम है उसका स्वभाव है, वजह क्या है, वजह इसका स्वभाव, वजह है अपना अपना स्वभाव की वजह से आती है, दूसरा कोई कारण नहीं है। स्वभाव में से निकली हुई स्वाभाविक पर्याय है वो, तो स्वभाव पर्याय है, विभाव पर्याय नहीं है।
प्रेम की चाहत प्रेम स्वभाव को व्यक्त करती
है। हाँ, स्वभाव को व्यक्त करती है। केवल निर्विकार छता परब्रह्म प्रेम मर पराभक्ति में वश छे, ये हृदय मां जेने अनुभव कर्यो छे, एवा ज्ञानीओनी गुप्त शिक्षा छे। अत्रे परमानंद व्रत छे, असंग वृत्ति होवाथी समुदायमां रहेवू बहु विकट छे, जेनो कोई पण प्रकारे यथार्थ आनंद कही शकात नथी, एवुं जे सत्स्वरूप थी जेना हृदयमां प्रकाश આમાં તો વાંધો પડ્યો હતો શરૂઆતમાં, આ લોકોએ થોડા ફેરફાર કર્યા છે, ઓરિજિનલ નથી થયો, પછી કૃપાળુદેવના અંદર અંદર મોક્ષ કીધું કે આ આપણો અધિકાર નથી, આપણને ગમે ન ગમે આપણે કાઢી નાખીએ,
હા
પોપટલાલભાઈએ પણ વાંધો ઉઠાવ્યો હતો, અને એ બહુ વિચારક હતા, આમાં શું છે આ કામ કર્યું છે મનસુખભાઈ, મનસુખભાઈ નાનાભાઈએ કર્યું છે, અંબાલાલભાઈ સાથે હતા, મનસુખભાઈ કિરતચંદ, હા ખબર છે ને, પ્રકાશક મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા, એ જે પહેલી આવૃત્તિ છે ને, આમાં સંશોધક સંશોધક શબ્દ વાપર્યો છે, સંશોધક મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા, આમાં તો તૃતીય આવૃત્તિ, આમાં ઓરિજિનલ આમાં ફેરફાર છે, આ જે છેલ્લે આ મોટા ગ્રંથમાં ઓરિજિનલ લીધું છે, વર્ડ ટુ વર્ડ કોઈ પણ જાતના ફેરફાર વગર, એ પોપટલાલ મોકમચંદ ભાઈ કીધું હતું કે આ આપણે ન કરી શકાય, નાની પુરુષની વાતમાં ફેરફાર આપણે ન કરવો જોઈએ અને ન કરી શકાય, એ વિચારક હતા, ઘણા તો એમ કહે છે કે પામી ગયા હતા પાછળથી, પણ વિચારક ઘણા હતા, એ વાત તો એમની ડાયરી ઈડરમાં જોઈ હતી, ઈડરમાં એમની હસ્તલિખિત ડાયરી જોઈ હતી, 1600 વચનો હતા, કેટલા 1600 વચનો હતા, ઘણી વાતો સારી લખે છે, કેટલીક વાતો તો અંતર વિચારમાંથી આવી હોય એવું પ્રતીત થાય, બહુ સારી યોગ્યતા હશે, બહુ ઊંડા વિચારક હશે, એ વાત તો ચોક્કસ છે, જો એમને પણ કેવું થયેલું 1944માં એ કૃપાળુદેવના પ્રથમ પરિચયમાં આવ્યા અને ઉપરથી ગયો, ઓળખી ન શક્યા, કંઈ કિંમત ન આવી, 10 વર્ષ નીકળી ગયા, 1954માં ફરીને પરિચયમાં આવ્યા, પછી કિંમત આવી, પછી ચોટી પડ્યા, પછી વળગેરિયા, અને ઘણો ફાયદો થયો, વળગેરિયાને ફાયદો પણ ઘણો થયો, પછી એમણે વડવામાં આશ્રમ કર્યો 1968માં, 10 વર્ષ પછી વડવાનો પહેલો આશ્રમ એમણે કર્યો, એ વડવાના આદ્ય સ્થાપક, આશ્રમના આદ્ય સ્થાપક પોપટલાલભાઈ છે, હા સ્વતંબર સ્વતંબર દિગંબરનો ભેદ તો એ લોકોને કોઈને હજી ખ્યાલ, હજી પણ ખ્યાલમાં નથી આવતો, મોટા ભાગનાને ખ્યાલમાં નથી આવતો, કેટલાક કેટલાક હવે ગુરુદેવનું સાહિત્ય વાંચીને જે ગુરુદેવ બાજુ વળ્યા એ લોકોમાં ફેરફાર થઈ ગયો, જેમ કે આ કોબા આશ્રમ છે ત્યાં દિગંબર પ્રતિમા છે, એમાં અમુક અમુકમાં ફેરફાર છે. કોબા બાજુ જે બાજુ બોલ્યા એ બધા ખ્યાલ આવી ગયો કે દિગંબર સત્ય છે, એટલે દિગંબર સાહિત્ય પણ વાંચતા થઈ ગયા બધા. માન્યતા સૌની સ્વતંત્ર છે. આપણે તો પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવે 45 વર્ષ સુધી પ્રવચનો આપ્યા પછી બધાની માન્યતા ભિન્ન ભિન્ન છે કે નહીં? હે, આપણે જ્યાં ભિન્ન ભિન્ન વિચારોને ભિન્ન ભિન્ન માન્યતા થઈ ગઈ કે નહીં? આજ કે પ્રભાત છે, નિરંજન દેવ કા કોઈ અદ્ભુત અનુગ્રહ પ્રકાશિત હુઆ હૈ. પ્રભાત એટલે વહેલું પરોઢિયું, વહેલી સવારથી નિરંજન દેવ અમારા આત્મા ઉસકે કોઈ અદ્ભુત અનુગ્રહ પ્રકાશિત હુઆ હૈ, મને ઉસકી કૃપા હુઈ. નિર્વિકલ્પ દશા બહુત અચ્છી આઈ, ક્યાં નિર્વિકલ્પ શુદ્ધોપયોગ કી દશા બહુત અચ્છી આઈ. આજ બહુત દિનો સે ઇચ્છિત પરાભક્તિ કિસી અનુપમ રૂપ મેં ઉદય હુઈ, એવી પરાભક્તિ હૈ. આત્મા ઓર પરમાત્મા કા એક હો જાના, નિર્વિકલ્પ શુદ્ધોપયોગ હો જાના. બહુત દિનો સે ઈચ્છા રખતે થે એસી પરાભક્તિ કિસી અનુપમ રૂપ મેં ઉદિત હુઈ હૈ. તો પરાભક્તિ દિખાને કે લીએ શ્રીમદ ભાગવત કા એક દ્રષ્ટાંત દિયા હૈ. શ્રીમદ ભાગવત મેં એક એસી એક કથા હૈ, ક્યાં? શ્રીમદ ભાગવત મેં એસી એક કથા હૈ કે ગોપિયા ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણચંદ્ર કો દહી કી મટકી મેં રખ કર બેચને નિકલી થી. ભગવાન કો બેચને કો નિકલી થી, દહી કી મટી મેં તો દહી થા, લેકિન વો ભૂલ ગઈ, વો ભગવાન કો બેચને નિકલ ગઈ. યો દહી કી મટુકી હૈ, વો પ્રસંગ આજ બહુત યાદ આ રહા હૈ. વો પ્રસંગ હમકો આજ બહુત યાદ આ રહા હૈ. ઇસમે ક્યા હુઆ હૈ કે લય લગી લાગી હૈ, ક્યા? હમકો હમારે પરિણામ મેં હમારે પરમાત્મા કી લય લાગી હૈ. દૂસરા કુછ હમકો દિખતા નહીં હૈ. અન્ય મત મેં આતા હૈ કે પરમાત્મા સર્વવ્યાપક હૈ. કાસ ચાસની પાસ પણ વિશ્વપતિ નો વાસ, કવિતા આવતી ને, વાત દૂસરે પ્રકાર સે હૈ. જબ અપને પરમાત્મા કે પ્રતિ ઉતના પ્રેમ આતા હૈ તો હર જગહ વહી દિખતા હૈ, જહાં દેખો વહાં વહી દિખતા હૈ, દૂસરા કુછ દિખતા નહીં હૈ. તો જૈસે વ્યાપક હો ગયા હર જગહ, વાસ્તવ મેં વ્યાપા નહીં હોતો, અપની દ્રષ્ટિ એસી હૈ, વહી વિઝ્યુઅલાઇઝ હોતા રહેતા હૈ. હાલુ ચાલુ ને પ્રભુ સાંભળે રે, મને ખાતા પીતા બોલતા ઊંઘતા પ્રભુ હરી સાંભળે રે, એ દશા થઈ જાય છે. ઘનશ્યામભાઈ આયા હતા ને, શ્રીમદ ભાગવત મેં એસી એક કથા હૈ કે ગોપિયા ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણચંદ્ર કો દહી કી મટી મટુકી મેં રખ કર બેચને નિકલી થી, વો પ્રસંગ આજ બહુત યાદ આ રહા હૈ. યો પ્રસંગ આજ બહુત યાદ આ રહા હૈ. જ્યાં અમૃત વહેતા હૈ, ક્યાં? वो पराभक्ति में क्या आता है, अमृत बहता है, वहाँ शस्त्र दल कमल है, ये दही की मटकी है और आदि पुरुष उसमें विराजमान है, वो भगवान वासुदेव है। ऐसा भागवत में वो सब बात आती है। उसकी प्राप्ति सत्पुरुष की चित्तवृत्ति रूप गोपी को होने पर, अब क्या है कि ऐसे अपने परमात्मा की प्राप्ति जो ज्ञानी पुरुष है उसकी चित्तवृत्ति रूप गोपी है, उसकी चित्तवृत्ति है वो गोपी है, तो गोपी को होने पर वह उल्लास में आकर, वो क्या है उल्लास में आकर आता आ जाता है ज्ञानी, और दूसरे मुमुक्षु आत्मा के प्रति ऐसा कहती है वो वृत्ति कि कोई माधव लोए हारे कोई माधव ले, मही लेवाने गुजराती में इन्हें मही कहे, हिंदी में गुजराती में इन्हें दही पण कहे और साहित्य की भाषा में उसको मही कहते हैं, मही की मटकी, मही मैंने दही, तो मही म शब्द आगल है तो वहाँ भी माधव में म शब्द आगल है, तो मही का शब्द बदल करके माधव हो गया, कोई माधव लो कोई माधव लो। ये भक्ति का पत्र सुभाग भाई को लिखा है, तो सुभाग भाई को ऐसी अनन्य भक्ति थी ने, इसलिए तो सुभाग भाई आगे पूछते हैं कि आपने वो भागवत वाली बात कहाँ से कही, वो भागवत वाली बात आपके सुनकर हमको बहुत हर्ष आया, क्योंकि उसके अंतर परिणाम और वो सब माल मेल खाते थे, तो उनको बहुत परम हर्ष आया, ये बात आपने कहाँ से कही, तो वो भी हमारा अनुभव का विषय, आज जो तुम्हारा अनुभव का विषय है वही हमारा अनुभव का विषय, वो हमारे आत्मज्ञान से हमारे अनुभव से वो बात हमने कही है, हमको भी ऐसा अनुभव हुआ था इसलिए हमने ऐसी बात कही है। आज आपका पद कृपा पत्र मिला, साथ में पद मिला, सर्वार सिद्धि की ही बात है। कौन लिखेलो छो पत्र स्वभाग में? जैन में ऐसा कहा है कि सर्वार सिद्धि महाभिमान की ध्वजा से 12 योजन दूर मुक्ति शिला है। कबीर भी ध्वजा से आनंद विभोर हो गए हैं। इस पद को पढ़कर परमानंद हुआ, प्रभात में जल्दी उठा, अशो सुधी 11 है, प्रभात में जल्दी उठा, तब से कोई अपूर्व आनंद रहा ही करता था। इतने में पद मिला, आपका पद वाला पत्र मिला और मूल पद का अतिशय स्मरण हो आया, मूल हमारे आत्म पद का अतिशय स्मरण हो आया, एकतान हो गए, इसमें एकतान हो गए। एकाकार वृत्ति का वर्णन शब्द से कैसा किया जा सकते है? दिन के 12 बजे तक रहा ये, सुबह से लेकर के 12 बजे अपूर्व आनंद तो वैसा का वैसा ही रहा, परंतु दूसरी बार का वार्ता करने में उनके बाद का कालक्षेप किया। केवल ज्ञान हमें पाम सू रे, ऐसा एक पद बनाया और हृदय बहुत आनंद में है, तो आठों महीने में उनको सम्यक दर्शन हुआ है, चाहे ये पत्र से हो या बाद में कुछ दिन के हो, लेकिन वो 23वें साल वर्ष में आसोज में अनुभव में आए हैं और उसमें सुभाग भाई निमित्त पड़े हैं। मूल पद का स्मरण होने में सुभाग भाई निमित्त पड़े, इसलिए लिखते हैं कि आपकी कृपा रहे हमारे पर, जैसी कृपा हुई वैसी कृपा, तो मैंने आपका निमित्त हमको बना रहे, हम तो आपके चरण रज है। तो जिसके निमित्त से कृपालु देव जैसे आत्मा को भी निमित्त निमित्त संबंध से लाभ हुआ हो, वो निमित्त भी कितना पात्र होगा, वो निमित्त में भी कितनी योग्यता होगी, ये विचार करने लायक बात। मलतू नहीं कहीं एक्जेक्ट कहीं मलतू नहीं, पर बातों तो घनी निकल बार पछे जुदी 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 रीते अनेक बातों आई है, महिमा वधारवा माटे पण कोई ने कोई बात आवी आवती रही, ऑथेंटिक कोई बात नहीं मिलती। એમનું તો જાતિ સ્મરણ હતું એટલે હોઈ શકે છે, પણ આમ પત્રમાં ક્યાંય સીધો ઉલ્લેખ નથી એમના, હસ્તાક્ષરમાં નથી મળતો, એકસો એકત્રીસ છે પહેલા પત્ર, 131 છે, 152 હે સૌસે પહેલા પત્ર, 131 છે પાસે પરિચય, ભાદવા મેં પ્રથમ ભાદવા મેં પરિચય ચાલુ હુઆ હૈ, ઓર સત્સંગ કે યહાં સે દોનો કે બીચ મેં હંમેશા સત્સંગ મેં રહેને કે લિયે ભાવ વ્યક્ત કિયે હૈ। और शंकराचार्य का श्लोक भी वहीं उद्धरण किया है, 132 पहला पत्र, 131 नहीं 132 मामा हिंदी में 132 क्षणमपि सज्जत सज्जन संगति का भवति भवारणव तरणे नौका, ये शंकराचार्य ना श्लोक है। एक क्षण भी सज्जन की संगति मिल जाए तो बहुरूपी समुद्र तरने के लिए वो नौका बनती है। एक क्षण का सत्संग संसार को तार देता है। तो शंकराचार्य ने सत्संग की महिमा की, उन लोगों में भी सत्संग की बहुत महिमा है, तो अर्थ किया है, सत्पुरुष का क्षण भर का भी समागम संसार समुद्र तरने के लिए नौका होता है, यह वाक्य महात्मा शंकराचार्य जी का है और यह यथार्थ ही लगता है, उसमें कोई अयथार्थता नहीं है, क्योंकि ये बात तीर्थंकर की ध्वनि में आई है, बाद में शंकराचार्य ने लिया, अन्य मत पैदा हुआ ने तो उन लोगों ने कोई न कोई बात तो उठाई है तीर्थंकर की, फिर विकृति में एडल्ट्रेशन किया वो अलग बात है, जो मूल बात है वो तो तीर्थंकर की है। इसलिए ज्ञानी की नजर वहां पहुंचती है कि ये तो मूल बात है, तीर्थंकर की है। चार वेद पुराण आदि शास्त्र सब मिथ्यात्मना, पर ज्ञानी ने थे ज्ञान भैसा, तीर्थंकर की वाणी उसने पकड़ी, उसमें से एज ठेकाने ठहरो, वो मूल बात को पकड़ के स्थिर हो जाओ। जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्य सामो, ज्ञानी अज्ञानी का शास्त्र पढ़े उसमें मूल बात तीर्थंकर की है वो अलग निकाल दे, और दूसरी बात को भी वो अलग निकाल सकते हैं, ये बात तीर्थंकर की नहीं है, ये बात तीर्थंकर की है। आपने मेरे समागम से हुए आनंद और वियोग से हुए अनानंद, आनंद का विपरीत, समागम से हुआ आनंद, एक दफे मिले तो वियोग से अनानंद हो गया, प्रेम तो शुरू वहां से हो गया था कि वियोग बर्दाश्त कर सकते नहीं थे, वियोग से हुए अनानंद प्रदर्शित किया है, वैसा ही आपके समागम के लिए मुझे भी हुआ है, और प्रेम एक तरफा कभी होता नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है, वो अरस परस होता है, तो जैसा आपको हुआ वैसे मुझे भी हुआ, आपका वियोग से मुझे भी अनानंद हुआ है, अंतकरण में निरंतर ऐसा ही आया करता है कि परमार्थ रूप होना और अनेक को परमार्थ सिद्धि करने में सहायक होना यही कर्तव्य है। तथापि कुछ वैसा योग अभी वियोग में है। भविष्य ज्ञान की जिसमें आवश्यकता है उस बात पर अभी ध्यान नहीं रहा, वो भविष्य ज्ञान वाली बात पर हम अभी उपयोग देते नहीं है। बस उतना संक्षेप पत्र है, पोस्ट कार्ड देता। प्रथम भादोवदी तेरस, पहला भादरवा वधमा एवा से परिचय में, पछी बीजो भादरवो ने आठ सौ सूद अग्यारस नोलो पत्र से, दोढ़ेक महीना में सम्यक दर्शन थियो एवं लागे से। तो वाघभाई ना समागम के बाद करीब डेढ़ दो मास में सम्यक दर्शन हो गया है और उसमें निमित्त सुभाग भाई है, इसलिए इसका उपकार अनेक जगह गाया है। उतना ही नहीं, हम आपको इसका बदला कैसे दें कि इसी भाव में आपको ज्ञान प्राप्ति कराएंगे, वो प्रॉमिस दिया है और कराया भी है। अर्थात भाववृत्ति कहती है कि हमें आदि पुरुष की प्राप्ति हुई है। सत्पुरुष की वृत्ति क्या कहते हैं कि हमको स्वरूप का अनुभव हुआ है, परम ब्रह्म का अनुभव हुआ है और यह एक ही प्राप्त करने योग्य है, और कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसलिए आप प्राप्त करें, मुमुक्षु को कहते हैं कि आप भी प्राप्त करें। उल्लास में वारंवार कहती है कि आप उस पुराण पुरुष को प्राप्त करें और यदि उस प्राप्ति की अचल प्रेम से चाहे तो हम वो आदि पुरुष आपको दे दें। और यहाँ बाजार मतलब क्या है, मुमुक्षु वृंद। मुमुक्षु वृंद में सत्पुरुष की वृत्ति ऐसा ही बोलती है कि हमको तो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई और हम आप भी सत्पुरुष के परम ब्रह्म की प्राप्ति करें और यदि उस प्राप्ति को अचल प्रेम से चाहे तो। कैसे प्रेम से? जो प्रेम कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई आने से, प्रतिकूलता आने से विचलित होता नहीं, इसको नाम अचलित प्रेम कहते हैं। प्रतिकूलता से वो विचलित होने वाला नहीं है। अचल प्रेम से चाहे तो हम आदि पुरुष आपको दे दें, आपके आपका अचल प्रेम तुम देख करके आपको भी अनुभव करा देंगे। तो ज्ञानी पुरुष मुमुक्षु को ऐसा कहते हैं कि आपको अचल प्रेम से प्राप्ति करनी है अपने गुण निधान की, हम तुमको करा देंगे, जाओ दे देंगे हम तुमको आदि पुरुष हमारे दही की मटकी में है माधव, तुमको दे देंगे बेचने में बिकने में तो पैसा लेकर नहीं बेचा जाता है, ये तो मुमुक्षु से कुछ लिए भी ना दे देते हैं भगवान को, लो ये उठाओ। हम इस मटके में रखकर बेचने निकली है और ग्राहक देकर मुफ्त में दे देती है। ग्राहक चाहिए, सच्चा ग्राहक चाहिए, इसलिए कोई ग्राहक बने। पुकार इसलिए करते हैं कि कोई ग्राहक बने, ग्राहक बने, अचल प्रेम से कोई ग्राहक बने तो वासुदेव की प्राप्ति करा देंगे। हाँ, स्वद्रव का ग्राहक तुरा से हो और पर द्रव की ग्राहकता तुरा से तजो। ये त्वरा शब्द आता है पूर्णता के लक्ष्य से, बहुत फोर्स आता है ना, अभी पूर्ण होना है, अभी पूर्ण होना है, इतना फोर्स आता है, वो त्वरा शब्द यहाँ से निकला है। तो गुरुदेव को ये बहुत जच गया। तो गुरुदेव ने अपनी भावना के जो गाथाएं थे उसमें जो प्रवचन किए उसमें वो 10 वचन पर वो प्रवचन किए और बोले कि 12 अंग का सार है, क्योंकि पूर्णता का लक्ष्य वहाँ से हुआ ना, तो वहाँ से शुरुआत होती है, बराबर यथार्थ शुरुआत होती है। कैसे? पूर्णता के लक्ष्य से जो आगे बढ़ा वो पड़ेगा नहीं, वो पूर्णता लेकर रहेगा, पूर्ण होकर रहेगा, ऐसी बात है, ऐसा फोर्स आता है। मटकी में रखकर बेचने के अर्थ यह है कि सहस्त्र दल कमल में हमें वासुदेव भगवान मिला है, मक्खन का तो नाम मात्र है, हमको तो वासुदेव भगवान मिला है। सृष्टि को मचकर मक्खन निकले तो मात्र एक अमृत रूप वासुदेव भगवान ही मक्खन निकलता है। पूरी सृष्टि में से कोई मक्खन निकाले तो क्या है, जो वासुदेव है वही अमृत है, दूसरा कोई अमृत नहीं है। देखो 206 में आखिरी पंक्ति है, 206 पत्र में, भागवत वाली बात आत्मज्ञान से ज्ञात है, महात्मा कबीर जी के दूसरी पुस्तक मिल सके तो भेजने की कृपा करें। परमार्थिक विषय में अभी मौन रहने का कारण परमात्मा की इच्छा है, जब तक असंग नहीं होंगे और उसके बाद इसकी इच्छा नहीं होगी तब तक प्रकट रूप से मार्ग नहीं कहेंगे, और ऐसा सभी महात्माओं का रिवाज है, हम तो दीन मात्र है। भागवत वाली बात आत्मज्ञान से ज्ञात है, ये हमारे आत्मज्ञान का अनुभव का विषय है हमारा। भागवत शास्त्र है वो श्री कृष्ण है, कोई अन्य मति नहीं है। श्री कृष्ण जैन थे, कौन थे? उनको 16108 रानियां थी, वासुदेव थे ना 3 खंड के, तो एक एक रानी का एक सोने का महल, सोने के द्वार का थे ना, एक रानी का एक सोने का महल और एक रानी को एक सोने का जिन मंदिर, तो 16108 रानियां थी, 16108 महल थे और 16108 जिन मंदिर थे अपने कॉम्प्लेक्स में, वो ऐसा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। आजकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना, उसमें वो लोग नहाने का होज बनाते हैं, स्नान करने का और रमने के लिए कोर्स बनाते हैं, तो धर्मात्मा वो जिन मंदिर बनाते हैं, इसको जैसा राग, हाँ धर्मात्मा होते वो तो जिन मंदिर बनाएंगे, तो जैन थे वो। तो अपने में हरिवंश पुराण है, तो हरिवंश पुराण है, लेकिन उन लोगों ने कोई विशेष रूप से ये बात लिखी है तो मूल बात का ये उपमा है, वो भी अध्यात्म भागवत में ऐसा ही उतारते हैं, अपने आत्मा पर परब्रह्म पर ये उतारते हैं वो लोग। हाँ अत्यारे जे भागवत है अन्य मतनु शास्त्र छे, पण एनी अंदर अमुक मूल बातो रही गई छे, मूल बात जो रह गई है वो अपने को तो उससे मतलब है। जैसे अभी जो श्वेतांबर के शास्त्र है वो तो उसमें भी ये गड़बड़ हो गई, लेकिन उसमें आचारंग का पहला सूत्र क्या है, जो एकम जानी सो समम जानी, वो निर्ग्रंथ प्रवचन है, वो मूल बात है। तो मूल बात तो हर जगह कहीं न कहीं रह गई है, अपने तो मूल बात से संबंध है, दूसरी बात से संबंध नहीं। मूल बात को जाने और वहां स्थिर होवे, उसको पकड़े। ऐसे सूक्ष्म स्वरूप को स्थूल बनाकर व्यास जी ने अद्भुत भक्ति का ज्ञान गान किया है, यह कथा और समस्त भागवत एक ही को प्राप्त कराने के लिए अक्षरशो भरपूर है, आत्मा को प्राप्त कराने की बात है वो, और वह मुझे हमें बहुत समय पहले समझ में आ गया। उन लोगों को समझ में आए कि नहीं आए, वो तो कृष्ण को भगवान मान करके समझते हैं, हमको तो दूसरी रीत से सब समझ में आया है हमारे ज्ञान में। तो आज अति अति स्मरण में है क्योंकि साक्षात अनुभव प्राप्ति है, इसलिए वो बात ज़्यादा स्मरण में आई, और इसी कारण आज की परम अद्भुत दशा भी है। अपनी दशा की खुली चर्चा किया है, ऐसी दशा से जीव उन्मत्त भी हुए बिना नहीं रहेगा। ऐसी दशा आएगी तो दूसरों को पागल दिखेगा कि क्या पागल हो गया है, तो मान लो ने पागल हो गया है तो हो गया है। अब जगत के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है ज्ञानी को। और वासुदेव हरि जानबूझकर कुछ समय के लिए अदृश्य भी हो जाए ऐसे लक्षण के धारक है। कैसी बात लिखा है, च्युत हो जाए तो अनुभव दशा छूट जाए, तो ये वासुदेव हरि है थोड़ा अपलक्षण वाले, कभी कभी अंतर्धान हो जाते हैं, तो इसलिए एक असंगता चाहते हैं कि वो अंतर्धान होने देंगे नहीं। और आपका सहवास भी असंगता ही है, इससे भी वह हमें विशेष प्रिय, असंगता से भी आपका समागम हमको ज़्यादा प्रिय है। इस तरह से सत्संग का भी महत्व बताया और पराभक्ति क्या चीज होती है और इससे कितना लाभ की प्राप्ति होती है, तो सब बात इसमें।